So, dear students of MSc class 2nd semester School of Studies in Microbiology, today we are going to discuss about purified macromolecule as a vaccine. As you know, what is a macromolecule? Macromolecule can be a DNA, protein, RNA, polysaccharide. So, they all are macromolecules. So, these macromolecules can also be used as a vaccine. So, first we discuss that why these macromolecule used as a vaccine. So, as you know, as I have already told you that some of the risks are associated with attenuated or kill whole organism vaccine. And now, that can be avoided with vaccine that consists of specific purified macromolecule derived from the pathogens. Okay, there are three general form of vaccine which is used currently used, and which are recombinant microbial antigens, inactivated exotoxins, and capsular polysaccharide. So first we will discuss about bacterial polysaccharide capsule, and that which I use as a vaccines. So as you know that some of the pathogenic bacteria have a layer outside the cell wall which is called capsule. This capsule is made up of polysaccharide, or it can be made up of polypeptides. So in this case, the virulence power of a pathogenic bacteria is depend upon its characteristic of presence of capsule, because the capsule show antiphagocytic property, and this capsule is hydrophilic polysaccharide in nature. So and show antiphagocytic property, it means that some of which bacteria contain a capsule outside their cell wall, they protect from phagocytosis. They protect themselves from phagocytosis. So, if we coat this capsule with antibodies or complement, so this will increases the ability of macrophages or neutrophils, which are phagocytic cells, to phagocytes such pathogen. अगर हम इनकी इस कैप्सूल को हम कोट करते हैं एंटीबॉडीज और कॉम्प्लीमेंट से, जिसके कारण क्या होता है, ये जो मैक्रोफेजेस और हमारे ब्लड के अंदर जो फेगोसाइटिक सेल होती है लाइक मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल, वो इस कैप्सूल को फेगोसाइट करने के लिए ज़्यादा कैपेबल हो जाती हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, वो पैथोजन को भी फेगोसाइट कर लेती हैं. सच फाइंडिंग प्रोवाइड्स the rationale of for vaccines consisting of purified macromolecules. इस idea ने ये बताया कि हम capsule को भी as a vaccine हम use कर सकते हैं. So there are एक bacteria होता है Streptococcus pneumoniae. इसके चारों ओर बहुत ही अच्छा इसके cell wall पे बहुत ही एक अच्छा कैप्सूल पाया जाता है. कैप्सूल की लेयर होती है. ये जो बैक्टीरिया होता है वो करता है न्यूमोकोकल निमोनिया कॉज करता है, और इसका जो कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड है वो 23 डिफरेंट एंटीजेनिकली कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड ये शो करता है अपनी सेल वॉल की लेयर पे. तो जब इसके कैप्सूल को जब हम एज ए वैक्सीन के फॉर्म में देते हैं, तो ये ऑप्शनाइजिंग जो एंटीबॉडीज हैं वो फॉर्म करती है, और ये जो वैक्सीन है वो ज़्यादातर इन्फेंट्स को दी जाती है. इसके अलावा एक और बैक्टीरिया होता है निजेरिया मैनिनजाइटिस, जो कि मैनिनजाइटिस कॉज करता है, और विच इज़ अ डिसीज ऑफ मैनिनजीज. थ्री लेयर ऑफ ब्रेन, अरेका मैटर, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर कम्बाइंस एंड मेक मैनिनजीज विच अनकवर्ड द ब्रेन. So this bacteria causes the inflammation of meninges, that's why it is called meningitis. So this bacteria meningitis, which cause bacterial meningitis, also consists purified capsular polysaccharides. so also consists a capsule. So capsule of this bacteria can also be used for making vaccine against this pathogen. But there is one limitation associated with the use of capsular polysaccharide vaccines, which is that it is unable to activate TH cell. ये hyper T helper जो cell है उसको activate नहीं कर सकते हैं. They only activate B cell in thymus independent type 2 manner. Okay, ये सिर्फ B cell को activate कर सकते हैं जिससे कि IgM प्रोडक्शन होता है और बहुत ही कम मेमोरी सेल्स डेवलप होती हैं और इसके अंदर कोई भी क्लास स्विचिंग भी नहीं होती है. कुछ रिसर्चर ने ये भी देखा है कि जो न्यूमोकोकल पॉलीसेक्राइड वैक्सीन है उसको जब हम सबक्यूटेनियस इम्यूनाइज करते हैं, सबक्यूटेनियसली इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी पर्सन के अंदर, किसी होस्ट के अंदर, तो वो इंड्यूस करता है IgA सीक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स के फॉर्मेशन को. वो ह्यूमन के अंदर IgA सीक्रेट करने वाली जो प्लाज्मा सेल है उसको इंड्यूस करता है, उसकी फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है. और अगर हमें ये TH सेल अगर हमें इंड्यूस करवानी हो, TH सेल का फॉर्मेशन करवाना हो, तो उसके लिए एक चीज़ ये हो सकती है कि वो जो पॉलीसेक्राइड एंटीजन है उसको हम किसी ऐसे एंटीजेनिक प्रोटीन कैरियर से अटैच कर दें. उसको जब हम पॉलीसेक्राइड एंटीजन को जब हम प्रोटीन कैरियर से अटैच करेंगे तो वो मोस्ट प्रोबेबली TH सेल्स को फॉर्म कर सकता है. इसका एग्जाम्पल है वैक्सीन्स फॉर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी टाइप बी, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड HIB. ये जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है ये जो बैक्टीरियल मैनिंजाइटिस कॉज करता है 5 साल से कम उम्र के बच्चों में, इस बैक्टीरिया के चारों ओर जो कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड होता है वो कोवैलेंटली लिंक होता है प्रोटीन से. ठीक है, यानी कि जो प्रोटीन कैरियर होता है इसके अंदर टिटनस टॉक्साइड होता है. यानी कि ये जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का जो पॉलीसेक्राइड कैप्सूल होता है वो होता है, उसे हम कोवेलेंटली लिंक कर देते हैं टिटनस टॉक्साइड से. ये जो टिटनस टॉक्साइड है इसमें प्रोटीन कैरियर का काम करता है. ठीक है, तो अब ये जो कॉम्बिनेशन बनता है कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन कैरियर का, ये ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होता है कंपैरेटिवली सिर्फ पॉलीसेक्राइड के वैक्सीन से, क्योंकि ये TH सेल को भी एक्टिवेटेड कर देता है और इसके साथ ये क्लास स्विचिंग भी करता है IgM से IgG के लिए क्लास स्विचिंग भी ये करता है. हालांकि इसके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये मेमोरी बी सेल्स तो बना सकता है बट इट कैन नॉट इंड्यूस अ मेमोरी टी सेल्स स्पेसिफिक फॉर द पैथोजन. तो इस तरीके की HIV वैक्सीन यानी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की, तो ये जो HIV वैक्सीन है जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए यूज़ की जाती है, ये जो मेजरली प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी देती है वो देती है मेमोरी बी सेल्स से, कुछ एक्सटेंट तक मेमोरी टी सेल भी इसके अंदर रह सकती हैं. द नेक्स्ट प्यूरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल वैक्सीन इज टॉक्सॉइड विच आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम बैक्टीरियल टॉक्सिन. सो फर्स्ट व्हाट इज टॉक्सॉइड? व्हेन द टॉक्सिन इज ट्रीटेड विथ सम काइंड ऑफ केमिकल्स इट्स कन्वर्टेड टू द टॉक्सॉइड विच इनएक्टिवेटेड इट्स पैथोजेनिसिटी but can be activate can activated immune system when introduced into the host. Okay, there are some kind of bacteria like diphtheria, Clostridium diphtheriae and Clostridium tetani produce toxins which is called diphtheria and tetanus toxin respectively. These both toxins are exotoxin in nature, and these toxin are responsible for the disease symptom in the after the infection in the host. So diphtheria and tetanus vaccine, for example, can be made by
purifying these bacterial toxin and then inactivated their toxin by using the formaldehyde to form toxoid. यानी कि ये जो बैक्टीरिया है इसमें से हम टॉक्सिन्स लेंगे, एक्सोटॉक्सिन लेंगे और इन टॉक्सिन को प्यूरीफाई करके, एक्सोटॉक्सिन को प्यूरीफाई करके हम जब इसे फॉर्मेल्डिहाइड से इनएक्टिवेटेड करवाएंगे तो ये टॉक्सिन टॉक्सॉइड में कन्वर्ट हो जाएंगे. अब जब हम इन टॉक्सॉइड को एज अ वैक्सीन किसी भी होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो ये टॉक्सॉइड एंटी टॉक्सॉइड एंटीबॉडी को फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है. ये जो एंटी टॉक्सॉइड एंटीबॉडी है, दीज आर आल्सो कैपेबल ऑफ बाइंडिंग टू द टॉक्सिन एंड न्यूट्रलाइजिंग इट्स इफेक्ट. ये एंटी टॉक्सॉइड एंटीबॉडी टॉक्सॉइड से जाके बाइंड होती है और टॉक्सॉइड से जाके और उसके साथ ही साथ जब कभी इन्फेक्शन होगा तो टॉक्सिन जो सीक्रेट होगा उससे जाके बाइंड होंगी और ये इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करती हैं. जब हम ये टॉक्सॉइड वैक्सीन्स प्रिपेयर करते हैं तो हमारा मेन टास्क ये होता है कि हम डिटॉक्सिफिकेशन करें, हम उसके एपिटोप्स में कुछ भी ज़्यादा एक्सेसिव मॉडिफिकेशंस नहीं करते हैं वरना वो टॉक्सिन के जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो सकता है. इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि ये जो टॉक्सिन है बल्क में हमें मिले और फिर हम इसको प्योरीफाई करें देन इसकी वैक्सीन प्रिपेयर करें तो बल्क में जो हमें टॉक्सिन है वो हम कि ये जो एक्सोटॉक्सिन का जीन है इसको किसी सूटेबल होस्ट में जो कि इजीली ग्रो कर पाए उसमें हम इसको क्लोन कर देते हैं और इस तरीके से हमको लार्ज क्वांटिटी का बल्क में एक्सोटॉक्सिन मिल जाता है जिसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्योरीफाइड कर सकते हैं और हम फॉर्मेल्डिहाइड से इनएक्टिवेट करके उसकी वैक्सीन प्रिपरेशन कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रोटीन्स कैन प्रोटीन्स and which are also can that can be used as a purified macromolecule as a vaccine. जब प्रोटीन से हम वैक्सीन बनाते हैं इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को. इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम क्या करते हैं, किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर जो या किसी भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिस्म के ऊपर जो प्रोटीन जो एपिटोप है वो प्रोटीनेशियस है इन नेचर में, वो किसी ना किसी जीन से कोड हो रहा है तो वो जो जीन है इम्यूनोजेनिक प्रोटीन को कोड करने वाला जीन है उसको हम क्लोन करवाएंगे और एक्सप्रेस कराएंगे किसी भी बैक्टीरिया ईस या मैमेलियन सेल में अकॉर्डिंग टू द कि किसमें वो ग्रो करेगा और उसको हम क्लोन कर सकते हैं. तो ये सब क्लोनिंग के लिए हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है. तो इस तरह बहुत सारे जो बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ जो पैथोजेंस हैं उनको उनके जो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर को कोड करने वाले जीन्स है सरफेस एंटीजन को जो कोड करने वाले जीन्स हैं उनको क्लोन किया जा चुका है और उनका जो एक्सप्रेस जीन है उसको हम वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं. और इस टाइप का सबसे पहला यूज़ होने वाला ह्यूमन के लिए जो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है एंटीजन वैक्सीन है वो है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन. दिस वैक्सीन वॉज डेवलप्ड बाय क्लोनिंग द जीन फॉर द सरफेस एंटीजन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस HBS एंटीजन जिसे बोलते हैं और इसको हमने एक्सप्रेस करवाया ईस की सेल्स में और फिर इस ये जो रिकॉम्बिनेंट सेल है ईस सेल्स में हम इसको जब एक्सप्रेस कराते हैं तो इन ईस सेल्स को हम बल्क में ग्रो कराने के लिए फर्मेंटर्स का यूज़ करते हैं. फर्मेंटर में यूज़ करवा के हम इसका जो HBS एंटीजन है उसको हम सेल के अंदर एक्यूमुलेट करवाते हैं देन इसको ब्रेक करके इस सेल को हार्वेस्ट कर लेते हैं और डिस्टर्ब कर देते हैं उसको हाई प्रेशर से जिसके कारण ये जो उसका रिकॉम्बिनेंट एंटीजन है वो पूरा मीडिया में रिलीज हो जाता है. देन इसको हम प्योरीफाई कर लेते हैं जो भी नॉर्मल कन्वेंशनल बायोकेमिकल टेक्निक्स हैं और इस रिकॉम्बिनेंट HBS एंटीजन जो होता है उसको हम हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट वैक्सीन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं. और जब इसको किसी होस्ट के अंदर हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं इनोकुलेट करवाते हैं तो ये प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज रेज करने के लिए कैपेबल होता है. सो दीज ऑल अबाउट द प्यूरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट कैन बी यूज्ड एज अ वैक्सीन. बिसाइड्स दिस Nowadays, synthetic peptides can also be used as a vaccine. जिसकी रिसर्च अभी प्रोग्रेसिव है, उसको हम सिंथेटिक पेप्टाइड को भी हम एज ए वैक्सीन की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो रिसर्च की जा रही है वो एक तो ये है कि ये जो पेप्टाइड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा इम्यूनोजेनिक नहीं होते इनके जो जितना कि प्रोटीन होते हैं, क्योंकि जब आपने एंटीजन पढ़ा होगा तो किसी भी कैरेक्टर के एंटीजन होने के लिए ये ज़रूरी होता है कि उस एंटीजन का एक पर्टिकुलर वेट होना चाहिए, वो कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड से एरोमेटिक अमीनो एसिड से मिलकर बनना चाहिए। जबकि शॉर्ट पेप्टाइड अगर होंगे सिंथेटिक पेप्टाइड्स तो वो क्या होते हैं, उतने ज़्यादा एंटीजेनिक नहीं होते जितने कि इम्यूनोजेनिक नहीं होते जितने कि प्रोटीन होते हैं। तो उन पेप्टाइड्स को बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि वो किसी होस्ट के अंदर जाएंगे और ह्यूमोरल एज वेल एज सेलुलर जो इम्यूनिटी है वो रेज करेंगे। इसके लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, इन पेप्टाइड्स को हम किसी कॉन्जुगेट या एडजुवेंट जो कि रिलीज़ करते हैं स्लोली एंटीजेनिक उसकी प्रॉपर्टी, उसको हम उसके साथ टैग कर सकते हैं और होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी एपिटोप की स्टडी करके हम इस पेप्टाइड्स को भी बना सकते हैं और इन पेप्टाइड का यूज़ वैक्सीन के लिए कर सकते हैं। थैंक यू।